दूसरा है गुह्य उपदेश, तीसरा है गुह्यतर उपदेश, और है एक गुह्य सम उपदेश, और एक है सर्वगुह्यतम उपदेश। जो लोग गीता पढ़े उन्हें ये शब्द उसमें लिखे गए हैं, साधारण तो नहीं लिखा गया, गुह्य उपदेश लिखा। एक गुह्यतर और सर्वगुह्यतम। साधारण उपदेश तो ये है, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं मैं भीख मांग करके भी अपनी जीविका का निर्वाह करने के लिए तैयार हूं, किंतु अपने सगे संबंधी बंधुओं को मारने के लिए तैयार नहीं। मैं भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, अपने भाई दुर्योधन को, अपने साला को, अपने मामा को, शल्य को सामने युद्ध में देख रहा हूं। एक तुच्छ अर्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, राज्य के लिए मैं इन संबंधी और कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता। यदि भीख मांग करके मुझे रहना पड़े तो भी अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए तैयार, इनको नहीं मार। साधारण दृष्टि से ये बुरा क्या उन्होंने कहा, ठीक ही तो कहा ना। दो चार पैसे के लिए, राज्य के लिए किसी का वध करना उचित है? वहां पर तो लाखों लोग खड़े हैं मरने जीने के लिए। ये अर्जुन अपनी दृष्टि में ठीक ही कह रहे हैं और लोगों की दृष्टि में भी ठीक कह रहे हैं। कृष्ण ने कहा उनसे, अरे तू मूर्ख होकर बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहा है क्या? अशोच्यान्न अन्न तो दस्तम प्रज्ञावादान शुभाष से गतासु न गतासु नाम शोचन दिपंडित। ये उपदेश पहला यहीं से आरंभ होता है। तुम अपने को बुद्धिमान परम पंडित समझता है किंतु है तो मूर्ख ही आती। क्यों? जो चले गए हैं या जो चले जाएंगे उनके लिए शोक तू करता है? तुम्हारे शोक करने से ही क्या आना जाना लोगों का बंद हो जाएगा? मरना मरना तो भाई बंद नहीं होगा। गतासु जो चले गए हैं और अभी जो चले जाएंगे, तुम्हारे मरने के बाद भी लोग जाते रहेंगे या धारा प्रवाह कभी रुकेगा नहीं, तू समझता है उसके लिए शोक करता है। तू उसका मालिक है, तुमने उन लोगों को बनाया और तुमको उनके लिए चिंता है। भरण पोषण तू सबका कर रहा है, न कि ये सबको सृष्टि करने वाला और पालन करने वाला कोई दूसरा है। कौन है वो? है तो खूब किंतु ही कह रहे हैं जो वो परमेश्वर है, ईश्वर है। तू उसके लिए शोक करता है। देखो आप गुप्त बात बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? आत्मा और अनात्मा की बात। पंचाश जीर्णानी जथा विहाय नमान गृहणाति नरोपराणी तथा जीर्णान्यानि संजात नमान देही। कहते हैं तुम ये समझते हो कि इसको मार देने से वो मर गया, इसको छोड़ देने से वो रह गया। शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती है भाई, उसमें एक आत्मा है ना? और शरीर के मरने से और नहीं मरने से उसका कोई भी संबंध नहीं है। तू समझता है जो शरीर को मार दिया तो आत्मा भी मर गई, यह बात संपूर्ण गलत। आत्मा के लिए ये शरीर क्या है? वंशास जीर्णानी जथा विहाय। जैसे फटे कपड़े हैं उसको आदमी छोड़ देता है, नया पहन लेता है, ऐसे ही मरते समय इस शरीर से उसका वियोग होना ही मरना है। वो शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा जो पुराने कपड़े फटे हुए को मान ले, मैले और गंदे कपड़ों को छोड़ करके नया पहनने में उसको कष्ट होता हो, उसे तो बड़ा आनंद होता है। हाँ, छोटा सा बच्चा है अभी 10-15 दिन का, एक महीने का, दो महीने का, चार महीने का, एक वर्ष का, उस बच्चे के कपड़े को निकालो तो वो रोएगा और नया पहनाओ तो भी रोएगा। वो जानता नहीं है ना, उसको कष्ट होता है। मैया रोते हुए रोएगा तो रोते हुए भी उसको कपड़ा पहना देती है और पुराना कपड़ा निकाल लेती है, पेंट इधर से सरका लेती है और वो रोता है फिर इसके बाद भी ठीक हो जाएगा। ये मूर्ख लोग ऐसे ही, इसलिए ये शरीर आत्मा नहीं है। शरीर से विजुग होने का नाम मरण है और आत्मा से शरीर को मिल कोई न्याय मिलना ये क्या, ये तो खुशी की बात है न्याय मिल गया, किंतु आदमी शोक करते हैं। तू ऐसे ही शोक करता है, आत्मा अजर है। नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयं चापो न शोषे अति मारुतः। शास्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, बंदूक रिवॉल्वर या तलवार इत्यादि के द्वारा, बम के द्वारा भाई आत्मा को नहीं काटा जा सकता, स्पर्श ही नहीं होगा। शरीर को काटा जा सकता है, ये तो मिट्टी है, फिर मिट्टी में मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी। पांचों तत्व एलिमेंट्स हैं, ये पांचों पांचों में अंत में मिल ही जाएंगे। कित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह प्रथम, ये पांच तत्वों का ये हो जाएगा। इसको न तो शस्त्र छू सकते हैं, न हवा इसको सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल इसको भ्रष्ट कर सकता है। ये बिना इसके उसकी स्थिति है, इसलिए भाई इसको तो कोई मार नहीं सकता। इसका कंट्रोलर कौन है? वो प्रभु एकमात्र है, दूसरा इसका कंट्रोलर नहीं है। इसलिए तुम इसके मारने से शोक मत करो और इसके जन्मने से भी खूब कोई आनंद की बात, वो तो सब समय उसकी स्थिति है। ये शरीर के मरने से या जीना रहने से भी इसकी स्थिति नित्यकाल है, किसी न किसी रूप में ये रहेगा, बिना शरीर का भी रह सकते हैं। जैसे नारद जी का शरीर देखने में तो हमारे जैसे मालूम होता है, कृष्ण का शरीर ये हमारे जैसा दिखने में लगता है, किंतु हमारे जैसा वो नहीं है, वो चिन्मय शरीर है, वो मरेगा नहीं। प्रहलाद महाराज जी को भेज दिया गया, आग में जला गया, मरे क्यों नहीं? उनका शरीर ऐसा था नहीं। हनुमान जी मरेंगे नहीं, उनका शरीर ही कुछ दूसरे तरह का है, चेतन है, इसलिए वो मरेंगे। इसलिए तुम इसके लिए चिंता अधिक मत करो। ऐसे जो उपदेश हैं और इसके बाद का उपदेश दिया, जो लोग आत्मा और अनात्मा के विषय में पंडित हैं, जानते हैं अनुभव से, जो लोग इसके लिए दुख सुख के से प्रभावित नहीं होते, सब समय शांत प्रशांत बने रहते हैं, वे लोग गीता के द्वितीय अध्याय के अंत में ये बतलाया गया है, वो लोग यथार्थ में बुद्धिमान है। जो लोग सुख और दुख को एक ही पलवे पर वजन करते हैं, न सुख से खूब अत्यंत सुखी होते हैं, न दुख से घबराते हैं, इनसे उनका कोई तात्, जैसे कछुआ है कभी अपने अंगों को निकाल देता है ने? और फिर कभी अपने अंगों को अपने में सीट लेता है, ऐसे ही ये बुद्धिमान पुरुष लोग सुख और दुख दोनों को ही बराबर समझ करके आत्मचिंतन में लगे रहते हैं। ये लोग जोगा रूप देते हैं, ये उससे श्रेष्ठ है। इसके बाद ही बतलाते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मण लोकयम अन्यत्त कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन से ये मुक्त संग समाज। बिना कर्म के एक भी व्यक्ति कभी भी एक क्षण भी नहीं रह सकता, कर्म करना अपरिहार्य है। बिना सांस लिए रह नहीं सकते, ये भी बिना सोए हुए नहीं रह सकते, बिना खाए रहे नहीं, ये भी कर्म है, इसलिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं सब कर्म करें? क्यों सब कर्म करने से भी नहीं होगा? कर्ण कैसा सब कर्मी था? बहुत सब कर्मी था, वो साधारण नहीं था, सूर्य का अवतार था, वैसा सब कर्मी था। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें वो घायल हो गया और मरने जा रहा है, अर्जुन ने उन्हें मारा था, वो रात हो गई और उस समय में वो प्रतीक्षा कर रहा है, जब मेरी मृत्यु होगी और जीत और त्याग वहां पर घेर रहे हैं, वो गदा उठा करके और ऐसे ऐसे करके अपनी रक्षा कर रहा है, जब तक प्राण निकल जाए तब तक ये लोग आंख न निकालें और सब गड़बड़ न करें, इसलिए अपनी रक्षा कर रहा है। इतने में रात में एक ब्राह्मण आया, बोला इसे आप कर्ण हैं अतः मैं कर्ण हूं, तो क्या चाहिए आपको? आपसे कुछ लेने के लिए आया। तो मरने के समय हमारे पास तो देने के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो नहीं महाराज, मैं युधिष्ठिर के पास में गया था, मेरी लड़की की शादी है, कुछ रुपए या स्वर्ण या अर्थ की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध भूमि में हमारे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहां से दूं। मैं आपके पास में आया दौड़ा हुआ, अब तो मरने वाले ही हैं, आप बड़े दानी हैं, आप मेरी सहायता करिए मेरी लड़की की शादी के लिए। तुम्हें क्या रही है? मेरे पास तो यहाँ पर कुछ है नहीं, मैं तुम्हें क्या दूं? महाराज आपके पास में है, क्या है बतलाओ? आपका दांत दो तीन टूट गया था, वो सोने से बंधा हुआ है और उसमें मणियां लगी हुई हैं। आप ये दान देंगे तो इसी से ही हमारी लड़की की शादी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा। बस गदा दिया और ऐसे महाराज टूट गया दोनों से। देखो कि कैसा दयालु और कैसा दानी। ऐसा दानी कि इंद्र अर्जुन की रक्षा के लिए उसके कवच और कुंडल को मांगने आए और कवच कुंडल उनके जन्म से उनके छाती की हड्डियों से एकदम लगा हुआ था और कुंडल कांस के साथ में जन्मा था, उसको काट करके नहीं दिया जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता। इंद्र मांगने के लिए आए ब्राह्मण के वेश में, बोले से आप क्या चाहते हैं? तो हम अपना कवच और कुंडल दे दीजिए। जब तक वो रहता तब तक अर्जुन नहीं मार सकते थे। उन्होंने कहा कर्ण ने, ठीक है मैं देता। ऐसा कहा करके अपने कान को काट दिया और छाती को चीर कर तलवार से चिर चिर करके और हड्डियों से उसको अलग करके और छू दिया। जब इंद्र लेकर के चलने लगे तो उनका रथ विमान ऊपर नहीं गया, उड़े ही नहीं। कहा मैंने पाप किया। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके उनसे कहा जी और कुछ मांगना है मुझसे? तो कहिए क्या मांगते हैं? तो ये मानता हूं कि आप हमसे कुछ लीजिए। तो मेरा हाथ आज तक ऐसे नहीं हुआ, नहीं ऐसे नहीं हुआ, मेरा हाथ ऐसा रही देने का। मैं कुछ मांग नहीं सकता आपसे, मैं क्षत्रिय हूं और दान देना मारा कर्तव्य में ले लूंगा नहीं। नहीं नहीं, मैं यही दान चाहता हूं कि आप ले, नहीं तो मैं विमान से जा नहीं सकता इन लोगों में। तब उन्होंने कहा तो आप अपनी शक्ति दे दीजिए जो अब है, जो एक बार छोड़ने से जरूर किसी को मार डालेगी। अंत में वही दे करके और उनको जाना। ऐसा दान था वो जो पीछे से वो शक्ति भी निकल गई थी, किसी प्रकार से अर्जुन को बचा लिया या कृष्ण ने बचा लिया। तो ऐसा वो दानी व्यक्ति, सत्कर्मी व्यक्ति, किंतु भगवान और भक्तों का विरोधी होने से उसको अशुभ कहा गया। इसलिए सत्कर्म ही वो केवल नहीं है, इसलिए गीता ने कहा यज्ञार्थाप कर्मणो लोकय मनत्त कर्म मंदना तदर्थम कौन संदेह मुक्त संग। यज्ञ के लिए कर्म करो, भगवान है यज्ञ, भगवान के लिए अर्पित होकर के करो। जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ पियो, जो कुछ चलो, वो सब कुछ लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित करो। यह है यज्ञार्थाप का। इसलिए सत्कर्म भी हो और यदि भगवान के लिए अर्पित न हो तो वो कर्म कर्म नहीं है। निष्कर्म अभी अच्छी भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम मिले। निष्कर्म की जब शोभा नहीं पाती है तो साधारण कर्म तो सत्य में अभद्र है, इसकी क्या शोभा पाएगी? इसलिए कर्म करना चाहिए और कर्म का फल भगवान को अर्पण कर दो तभी एक तरह से ठीक है। ये गुह्य सर्वोपदेश है, इसी को नौ अध्याय में बहुत अच्छी तरह से वो कहा गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। गुह्यतम उपदेश, गुह्यतम माने भगवान का भजन करना चाहिए। क्या संकीर्तन है और सब जो है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम इत्यादि करना चाहिए। नौ धावक ये गुह्यतम उपदेश है। भक्तों के साथ में कीर्तन करना है, उनका अर्चन करना है, वंदना करना है, उनका शरणागत तो करके ये सब करना है। तो ये गुह्यतम गुह्यतम। और सर्वगुह्यतम क्या है इसी को बतला रहे हैं। इसी पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर आया कि वो क्या है
सर्वगुह्यतम
मनमना भव मद भक्तो मद यादि मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि सप्तम से प्रियोसि प्रिय प्रतिज्ञानो प्रिय। तुम हमारा अत्यंत प्रिय है इसलिए तुमको बतला रहा हूँ। क्या बतला रहा हूं? उसी के लिए बतला रहे हैं। इसमें चार प्रकार के अर्थ हैं, चार प्रकार के उपदेश हैं। एक तो है सर्वगुह्यतम, फिर गुह्या गुह्यतम, फिर गुह्यतर और अंत में गुह्य। पहला अर्थ लेते हैं क्या है, मनमना भव। गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश ये मनमना भव जिसको कहते हैं, मन से हमारे बन जाओ, अपना मन हमको तुम दे दो, अब तुम्हारा ये मन नहीं रह जाए, इसको कहते हैं मनमना भव। साधारण चीज नहीं है, बहुत असाधारण चीज। मनमना का ये तात्पर्य है, कृष्ण उद्धव को भेज रहे हैं ब्रज में, तो वो कह रहे हैं कि जाओ वृंदावन में गोपियों को देखना, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है और अपने मन को हमारे में लगा रखा है, देह और दैहिक जितनी प्रकार की चिंताएं हैं सब कुछ हमारे में लगा दिया है और हमारे लिए ऐसा दिया है कि हमारे बिना वो रह नहीं सकते। इसी चीज को बतलाने के लिए कह रहे हैं मनमना भव। मनमना कैसे, कृष्ण मान लिया एक दिन गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, नंद भवन से निकले, बच्चों को चरा रहे हैं, अभी छोटे अभी बच्चे हैं, किशोर किशोर नहीं है, बच्चों को चराते निकलते समय ब्रज की गलियों में लाखों बछड़े चल रहे हैं, माताएं उनके साथ में चल रही हैं, नंद बाबा भी साथ हैं, कुछ दूर तक जाएंगे पहुंचाने के लिए, गोपियां कहीं छिपी हुई देख रही हैं, अट्टालिकाओं पर चढ़ गई हैं, झरोखों से देख रही हैं, कोई दरवाजे पर भी आ गई हैं, और कृष्ण को गोचारण करते हुए जाते हुए देख रही हैं। कृष्ण बच्चों के साथ में कुदकते हुए कभी बंसी बजाते हुए चल रहे हैं। एक घर में कोई नवेली आई है लड़की विवाहित होकर, उसने सुना कि कृष्ण जा रहे हैं गोचारण में, पद्धत तैयार होकर के वो जाने लगी। पासी में सास बैठी थी, ननद भी बैठी थी, उन दोनों ने कहा कहां जा रही है, तो उसने कुछ कहा नहीं, मत जाना, जाएगी तो तुमको सांप काट लेगा और फिर तू बचेगी नहीं। तो उसने कहा जितने ब्रज के बूढ़े से लेकर के और नई लड़कियां हैं, विवाहिता स्त्रियां हैं, पौरु माताएं, सभी लोग दर्शन करने जा रही, क्या सब तुमको वो काट देगा सा, तुम मत जाना, खबरदार तुमको हम मना कर रहे हैं, तुम मत जाना। मानी नहीं, अजय तुम क्यों जा रही हो, तो हम जा रहे हैं तुम मत जाओ। तो उसकी बात नहीं मानी, वो भी आकर के दरवाजे के किनारे खड़ी हो गई, वो देखने लगी। कृष्ण बच्चों को लेते हुए चले जा रहे, देखा जैसे ये नई बड़ी उत्सुकता से हमको देखने के लिए आई है, इसलिए एक बछड़े को बिछा दिया और बच्चा कुदता हुआ ठीक वैसे उसको किया जैसे ठीक उसके आस पास में आ गया बछड़ा कुदते हुए। कृष्ण भी झट उसके साथ ही साथ में वहां पर पहुंचे, मानो बछड़े को पकड़ने के लिए आ रहे, और जहां वो खड़ी थी उसके पास में आकर के अपनी बंसी ली और बंसी से उसके मुख में लगा दिया और उसके तरफ में हंस दे करके मुस्कुरा दिया और फिर वहां से चले गए। बस उसका मन भी उसके साथ साथ में निकल करके कृष्ण के साथ में चला गया और वो खड़ी की खड़ी रह गई। मन उसका था वो कृष्ण के साथ में चला गया, कृष्ण तो चले गए आगे, जब तक कृष्ण को देखते रहे उनको देखते रही और फिर दरवाजे पर वो खड़ी की खड़ी रह गई। कृष्ण चले गए, बछड़े चले गए, सब लोग चले गए, सब लोग लौट गए। सास उसको पकड़ करके कहती है, कहा था ना अब तो तुम चेत चल घर। उसको पकड़ करके किसी प्रकार से घर में ले गई, देखा जिसे ये तो बावरी हो गई, मन तो इसका है नहीं, तो कहे अरे एक बात कर, जरा दही ले आ तो, और दही लेकर के मछली से मतो चित्त बदल जाएगा। तो वो दही के बदले घर में गई और राई की हड़िया उठा लाई और मछली देकर के वो तो मथने लगी। सास ने देखा जी अभी इसका चित्त तंदुरुस्त नहीं हुआ, हड़िया ले ली और बोलिए देखो वो कुएं से पानी ला, चलने फिरने से जल्दी ठीक हो जाए। तो एक लड़का जो था घर में छोटा सा बच्चा उसी गोदी में दे दिया और एक घड़े को दे दिया यहाँ, और उस घड़े के ऊपर में और एक घड़ा रख दिया और इस हाथ में छोटी सी बाल्टी दे दी और उस पर कुएं बड़े गहरे ब्रज के और मोटी रस्सी वो भी 10-5 किलो उसकी हाथों में लटका दिया सिर पर घड़ा रख दिया, उसके ऊपर एक और घड़ा रख दिया, यदि होश नहीं रहेगी तो गिर पड़ेगा। बस वो तो अभ्यास उसका, सबको लेकर के बच्चे को भी लेकर के ऐसे घड़े भी ले लिया, इस पर भी घड़ा लेकर के चल पड़ी। वहां कुएं पर गई, कुएं पर उसको सबको रख दिया, पानी लेना है वहां, रस्सी रख दी, घड़ा भी रख दी। अब वो रख करके बच्चे को भी रख दिया, और रस्सी का फंदा था ना, उसको लेकर के घड़े में देना चाहिए, घड़े में न दे करके बच्चे के गले में लगा दिया। उसको याद ही नहीं, मन ही नहीं है ना, घड़े में जो ही उसके गले में दी, तो जो वहां पर गोपियां खड़ी है, अरे देखो तो ये क्या कर रही, कहा ये निश्चित इसको भूख लग गया। और दूसरी जो खड़ी थी, जो जानती थी कृष्ण किसका चित्त कब हरण कर लेते हैं, तो वो कहने लगी इसको भूत नहीं लगा, इसको नंद का पूत लगा। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सरस हैं, इतने प्रेमी हैं, जगत के प्रत्येक जीव एक बार भी उसको देख ले मुग्ध किए बिना छड़ेंगे नहीं। इसको कहते हैं मन मन आप भव, गोपियां छड़ेंगी इसलिए झूठ मुख को रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं उनके लिए, प्राण छोड़ रहे हैं, सारा ब्रज अनाथ हो गया है, गायें खाती नहीं है घास, बछड़े दूध नहीं पीते हैं, कोयला सुहाती नहीं है वृंदावन, मोर अब नाचे तनिए क्यों कृष्ण के बिना, वही तो ब्रजभूमि किंतु कृष्ण नहीं है। इसलिए मन मना भव, कृष्ण के प्रति यदि प्रेमा भक्ति है तो ऐसा ये गीता का उपदेश, मन मना भव ऐसा बोल। अर्जुन ने कहा जी प्रभु इस युद्ध क्षेत्र में मैं मन मना भव ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो युद्ध लड़ने की और मारी काटा काटी ये करने का ये युद्ध है, इसलिए यहाँ पर तो ये सब संभव नहीं, प्रभु हमारे लिए कुछ नीचे उतर करके कुछ शिक्षा दीजिए। तब उसके लिए कहते हैं मन मना भव मद भक्तो, हमने पहले नवे अध्याय में जो वर्णन कराया हूँ, मद भक्तो हमारा भक्त बनो, कैसा बड़ी भक्ति का साधक बनो, ये रागानुगा भक्ति अभी बतलाई, और ये उससे उतर करके कुछ हुआ ये सर्वगुह्यतम उपदेश, और उसके नीचे ये गुह्यतर में बतलाते हैं भगवान का भक्ति, गुरु से दीक्षा लो, संतों का संग करो, संभव है तो ब्रज में रहो, नहीं है तो घर में रहते हुए ब्रज में रहता हूँ, मन के द्वारा भी चिंतन करो कि मैं ब्रज में हूँ, राधा कुंड में हूँ, वृंदावन में हूँ, सेवा कुंड, मन के द्वारा यदि शरीर के द्वारा सुनो, घर में बैठे रहो मन में चिंता करो कि मैं वृंदावन में हूँ, हमारा मन शुद्ध है, मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, जीव मात्र का स्वरूप है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ऐसे मन में समझो, समझो कि मैं कृष्ण की दासी हूँ, और समझ करके और तुम मन ही मन में उनकी सेवा, तुम श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन बंदन करते हो। अर्जुन ने तो प्रभु ये युद्ध का क्षेत्र, यहाँ पर मैं ये सब चीजें श्रवण कीर्तन साधुओं के साथ में बैठ करके कहाँ से सुनूंगा, ये समन मन की तो एकाग्र नहीं है, हमारे लिए कुछ और उपदेश कीजिए। मन मना भव मद भक्तो मद याजी, याजी मने होता है अर्चन करना पूजन करना, हमारा पूजन करो, मन भी नहीं लगता है तभी पूजन करो, अब फिर तुम्हारा मन लग जाएगा, ये वैदिक भक्ति का अत्यंत निम्न सोपान है, जिसका हरिनाम में मन नहीं लग रहा है, जिसको हरि कथा में रुचि नहीं है, अच्छा तो भाई तुम ठाकुर जी का पूजा करो, घंटा ऐसा करो, उनके लिए भोग रंधन करो, उनके लिए स्नान कराओ, ये सब करो, धीरे 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 तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, घर में रुचि आ जाएगी। उन्होंने कहा जी प्रभु अर्चन करूं, यहाँ पर ठाकुर कहाँ से ले आऊं, पानी कहाँ से ले आऊं, फूल कहाँ से ले आऊं, ये सब संभव नहीं, इसलिए और कुछ नीचे उतर करके करिए। तब वो कहते हैं मद याजी मांग नमस्कार, एक बार तुम हमको प्रणाम कर दो बस इसी से हो जाएगा, तुम युद्ध करो, शरीर से युद्ध करो और वाणी से हमको प्रणाम कर दो, हाथ जोड़ करके और खड़े हो जाओ, बस इसी से ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। यह है सबसे निम्न मार्ग, ऐसा किसी भी धर्म में ऐसा नहीं, आपको कहीं कहीं पर देखेंगे 10 बार उठना पड़ता है नमाज में, 10 बार का कितनी बार उठना पड़ता है, उसमें परिश्रम होता है, और सब धर्मों में भी ऐसी बात है, हमारा एक ऐसा ही हिंदू धर्म है कि इसमें केवल प्रभु को स्मरण कर दो, हाथ ऐसा सीध न करके, यदि हाथ भी ऐसा करके यदि कर दो तो भी हो जाएगा, दंडवत प्रणाम करने की भी जरूरत, हे कृष्ण आपके लिए नमस्कार, एक बार भी नमस्कार करने वाला व्यक्ति को संसार में पुनरागमन नहीं होगा।
दशा समय
भी यज्ञ करने वाला भले उसको आ जाएगा, फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। दानी को भी आ जाएगा और योगी को भी हो जाएगा, किंतु हमारा नाम लेने वाला अजामिल। और सबसे देखो उदाहरण हमारे वाल्मीकि जी का, कितने पापी तापी और कभी उनको कोई नरक न कोई कर्मों का फल भोगना। नाम एक ऐसा सुंदर है, उनका प्रणाम एक ऐसा है। जो लोग भगवान को प्रणाम करते हैं एक बार भी मंदिर में, क्या मंदिर नहीं आता तो भी वहीं पर ऐसे भी कोई ठाकुर जी को ऐसे हे कृष्ण आपके लिए नमस्कार, उसको सब प्रकार के भयों से दूर कर देते हैं, उसको संसार से मुक्ति दे देते हैं, उसका सर्वस्व उसको दे देते हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है ये हमसे होगा, बस कृष्ण को नमस्कार किया। कहा मुझको क्या करना चाहिए, मन से चिंता करो मेरी और हाथ से युद्ध करो। अत्ताइयों का वध करना ही तुम्हारे लिए उचित है, इनका वध करके भी किसी को नहीं वध कर सकता। अर्जुन ने कहा ये कैसे, देखेगा तो हाँ देखूंगा। बस उन्होंने मुख फाड़ा और विश्व रूप दिखलाया, उसमें देखा क्या करोड़ों आदमी एक लाइन से भीष्म पितामह कर्ण दुर्योधन इत्यादि सभी और जितने भी राजा राजन्य वर्ग हैं कृष्ण के दांतों के तले मरे हुए पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा नए नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ब्रह्मा शंकर इत्यादि सभी आ रहे हैं और जा रहे हैं, देख करके ये समझ रहा सब उनको विश्वास है नहीं, कृष्ण ने सबको मार रखा है और कहे निमित्त मात्र हो सकते हैं, निमित्त मात्र बनो, सबको तो मैंने मार रखा है तुमको मारना नहीं है। कृष्ण ही जिसको जन्म देते हैं, किसी को रक्षा करते हैं, किसी को मारते हैं और कोई दूसरा नहीं। तब अर्जुन उनके कहने से झट युद्ध के लिए तैयार हो गए और जगत के लिए ये अमृत परोस दिया गया सोने के थाल में, सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम व्रज, और जगत का इसी से कल्याण। ये प्रारंभ है और भागवत जो है वो पीएचडी डी इसकी पुस्तक है। गीता समाप्त होने के बाद में सब भागवत में प्रारंभ रूप में हम उसमें प्रवेश कर सकेंगे। इसके संबंध में यदि होगा तो कल हम उसे तक लाएंगे, आज यही तक रहे। आप लोग खूब प्रेम से हरि नाम करें, जैसा भी अपना कर्मों को करेंगे और चलते फिरते उठते बैठते श्रद्धा नहीं है तो भी नाम करेंगे, कृष्ण की दया होगी, इसके अतिरिक्त हमारे कर्म नहीं सुधर सकते। इसी से सुख और शांति मिलेगी, इसी से सर्वस्व प्राप्ति होगी, हृदय की अस्थिरता भी चली जाएगी, जगत का विश्व का भी इसी से कल्याण होगा और दूसरे किसी उपाय से भी नहीं हो सकता है। एक दिन आएगा जब विश्व में सर्वत्र ही ये नाम कीर्तन जैसा भी प्रचार हो रहा है, धीरे 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 एकमात्र धर्म रहेगा, वही रहेगा सनातन नित्य धर्म, भगवान के प्रति शरणागति उनका नाम, बस यही एक धर्म रह जाएगा और बाकी सब धर्म धीरे 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 सब लुप्त हो गए। ये महापुरुषों की वाणियां हैं और ऐसे ही धीरे धीरे होगा। आजकल कम्युनिस्ट कंट्रीज भी धीरे 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 इसी की तरफ में बढ़ रहे हैं, इसी से अहिंसा दूर होगी, देश विदेश और जीव मात्र का इसी से कल्याण होगा। इसलिए आप लोग जहां भी रहेंगे जिस रूप में रहेंगे खाने पर थोड़ा सा विचार जरूर रखेंगे, अहिंसा न हो हिंसा न हो और ऐसी चीजों को ग्रहण करते हुए, क्योंकि इससे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो कुछ खाते हैं वो पैखाना और पेशाब के रूप में गंदा चीज निकल जाता है, जो रह जाता है उससे रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, उससे मेद मज्जा इत्यादि बनता है, उसी से फिर मन बनता है, जैसा खाएंगे वैसा ही मन होगा। यदि फिर बकरी का मांस खाएंगे तो वैसे ही दुर्बुद्धि होगी, प्याज लहसुन खाएंगे तामसिक बुद्धि वहां पर हो जाएगी, मन हो जाएगा। और सात्विक चीजें यदि ग्रहण करेंगे भगवान को देकर के तो सात्विक बुद्धि होगी, आप में कोई पाप करने की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी। इसलिए अच्छी चीजों का भगवान को भोग देकर के स्मरण करके और आप लोग ग्रहण करेंगे, बुद्धि भी ठीक रहेगी, भगवान का भजन भी हो जाएगा, मनुष्य जन्म इस प्रकार से थोड़ा सा कर दीजिए आप लोग जैसा करते हैं।
ट्रेनिंग को उसमें सही करना चाहिए, नींद से नहीं, नींद से तो
प्रेम
मैत्री दया और मित्र मैत्री दोनों ही करते हैं। तो कृष्ण कहाँ निवास करते हैं,
कृष्ण
कहाँ है,
कृष्ण कहाँ
ईश्वर सर्वतना
उसमें रहने पर भी जीव और कृष्ण अलग ही, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम होगा।
भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान उसके हृदय में रहते हैं।
प्रेम भगवान से क्यों करना चाहिए, जीव के प्रति क्यों नहीं होना चाहिए? प्रेम एक अखंड चीज है, हम जीव भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं। प्रेम जीव के प्रति नहीं हो सकता। हमारे समस्त शास्त्रों में ऐसी बातें आई, क्यों? कृष्ण स्वयं प्रेम है और वो अखंड प्रेम है, रसो वैसह। इसलिए जीव का उस प्रेम करना माने कृष्ण से प्रेम करना, माने वो प्रेम कृष्ण ही कही जा सकता। जीव उनका अंश है इसलिए उसके प्रति मैत्री होगा। जैसे माता पिता के प्रति हमारा जैसा भाव है, भाई के प्रति बराबरी का भाव होगा, उनके प्रति पूज्य बुद्धि रहती है। ऐसे ही समस्त पूज्यों के जो पूज्य हैं कृष्ण, उनके प्रति ही प्रेम उलग होगा। प्रेम कहते हैं संपूर्ण रूप से सेवा है? अब अपना कुछ नहीं रह जाए, और कृष्ण उसको ग्रहण कर, जीव ग्रहण नहीं कर सकता। जीव के प्रति संपूर्ण उसके सरेंडर होना, ये गुरु के प्रति होगा तो गुरु भी भगवान भगवान ही है, इसे उनके प्रति सरेंडर हो सकते हैं, किंतु वो भी सरेंडर किस लिए? तो वो कृष्ण के चरणों में हमें सरेंडर करा देंगे। इसलिए जीव प्रेम स्वरूप नहीं है, इसलिए जीव का प्रेम भगवान के साथ होगा, जीव के साथ करा देंगे, वो मैत्री भावना रहेगी। और जो कुछ नहीं जानते हैं उनके प्रति दया रहेगी, दया करके वो धीरे धीरे भगवान के चरणों में ऐसे।
और खाने पीने का कहा, खाने से मन खराब होता है, जैसे कोई जैनी होता है हमारे लिए होते हैं, वो भी नहीं खाते हैं, वो कुछ भी नहीं खा रही है, तो उनको फिर छूटा है। ये तो जैनी होते हैं जो या मारवाड़ी होते हैं, वो तो नहीं खाते हैं, जैन धर्म के जो होते हैं, तो ऐसा तो देखने नहीं आता कि बड़ा खुद होते हैं, हम बड़े नम होते हैं।
जैनी लोग मार करके नहीं खाते, किंतु मरे हुए को खाते हैं, और वो ऐसे खाते हैं जैसे एक आदमी गरीब है, उसको पैसा देना है, कहिए तुम्हें हम रात भर के लिए 50 रुपया देते हैं, और तुमको इस खाट में बांध देते हैं रात भर के लिए, जिसमें खटमल भरे पड़े हैं, और इस तरह से उनको खिलाते हैं। उनको गाय मर गई या कुछ मर गया, उसके मांस खाने में दोष नहीं है, मार खा करके खाने में दोष है, इसलिए मरवा करके खा सकते हैं, किंतु खाए तो, इसलिए वो सुख नहीं। विशेष करके कोई भी चीज आज खाया जाए, जब तक भगवान को अर्पित न किया जाए कोई चीज, तब तक वो चीज शुद्ध ही नहीं होती, चाहे वो सात्विक भी हो, चाहे तामसिक हो, चाहे बुरी हो वह अच्छी। और भगवान को कोई चीज बुरी अर्पित की ही नहीं जाती, विधि नहीं है, इसलिए भगवान को सात्विक चीजें दी जाती हैं, उनको ग्रहण करने से ही मनुष्य होता है, केवल सात्विक चीजें खाने से नहीं होता। भगवान को तो मानते नहीं।
एक मेरे मन हरी अति विश्वास है, राम से अधिक राम देता है, तो कृष्ण से तो अधिक कृष्ण के,
ये किस लिए कहा गया? कृष्ण से कृष्ण का नहीं, इसलिए कि कृष्ण के प्रति वो कृष्ण प्रेम को दे रहे हैं, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम होने के लिए। दास माने मान लो कि वो दास तो हम जिसको समझ रहे हैं, अपने गुरु जी को भगवान का सबसे बड़ा दास मानते हैं, तो भगवान से अधिक समझते हैं, किंतु वो गुरु क्या करता है? उन्हीं की सेवा करता है, इसलिए गुरु है। यदि वो गुरु भगवान की सेवा नहीं करता, उनके प्रति प्रेम नहीं करता, तो उसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए प्रेम किसी जीव के प्रति नहीं, गुरु के प्रति भी सेवा और श्रद्धा होनी चाहिए, भगवत बुद्धि चाहिए। भगवान को दिलाने वाले हैं इसलिए हमारे सबसे बड़े, भगवान को पीछे मिलेंगे, अभी तो गुरु जी दिला रहे हैं, इसलिए गुरु जी।